better two chairs, sitters, they should come inside, not in front of Thakurji. Otherwise, aparadh.
Or there.
Huh?
They can sit there.
No, they can sit in this side. better sit there. Oh, there you can, in front you can sit. Harjan Maharaj koi. Uvasena? ওখানে কেন বসো? এদিকে এসো। আর হরিদাস, হরিদাস এদিকে সব সময় লুকিয়ে বসবে, ওইদিকে বস, রঘুনাথ ওই মহারাজের সামনে, ওখানে, হ্যাঁ এদিকে চলে, হরিজন নয় ওইদিকে যা, মাথ মহারাজের রোজ ভস্প।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। বঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়েবচ পতিতানাম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো মহাবদন্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরদ্বিজে গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ তদ্ভক্তায় নমঃ। অঙ্গশ্যামলিচ্ছটাভিরভিত মন্দিততেন্দিবরম জড্ডঞ্জাগুদরোচিসং বিদদতং পট্টম্বরস্য বৃন্দারণ্যনিবাসিনম হৃদিলসদ্দামাভিরামোদরম রাধাস্কন্দনিবেশিতোজ্জ্বলকুজম ধ্যায়েদাম।
शास्त्रों के अनुसार अथवा हमने जो गुरु वर्गों से सुना है उसके अनुसार में हमसे अधिकार में जो उन्नत वैष्णव है वे हरि कथा कर रहे हैं तो उस समय वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा या नवदीप धाम की परिक्रमा छोड़ करके हरि कथा श्रवण करने से मंगल होता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। ये सुविधा नहीं मिलती। गिरिराज गोवर्धन जी पीछे कृपा करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, किंतु वैष्णव लोग गुरु हरि कथा के माध्यम से चित्त को शोधन कर देंगे। गिरिराज नहीं शोधन करेंगे, उसमें मायावादी इत्यादि कितने लोग परिक्रमा करते हैं, क्या होता है, शोधन होता है, वही विषय वासना की चीजें मांगते हैं, उनका चित्त शोधन नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रों में देखा जाता है कि सब लोगों ने वृत्तासुर इत्यादि के उपाख्यान में मम उत्तम लोक जनेश, हाँ भवते स्वकर्म भी तन माया तो कहते हैं कि संघ हमको मिले जहां पर कि वैष्णव लोग कीर्तन करते हैं हमको श्रवण करने का सुयोग मिले। ऐसे श्रीमद्भागवत में बहुत जगह ऐसे प्रसंग मिलेंगे चैतन्य। इसलिए आप लोग यहां पर हरिकथा का सुयोग है, वहां पर सब कुछ छोड़ करके हरिकथा सुने तत्पश्चात परिक्रमा करें चाहे जो कुछ करें, ऐसा सुयोग सब समय नहीं मिलता। कितनी सुंदर 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 हरिकथाएं होती हैं जो कि सब समय सुलभ नहीं होती है। इसलिए आप लोग इसके तरफ में ध्यान दे करके हरि कथा श्रवण करने का सुयोग प्राप्त करें। इसी से चित्त संशोधन होकर के प्रेममयी भक्ति ब्रज भक्ति प्राप्त हो सकती है। आज शुभ तिथि है, आज के दिन कार्तिक महीने में पूज्य व्रत के समय में आज के दिन प्रपूज्य चरण नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव हुआ, और साथ ही साथ दूसरे वर्ष में पहले वर्ष में पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी का और दूसरे वर्ष में परम पूज्यपाद वामन महाराज जी का तिरुभाव हुआ। जब मैं मठ में आया तो हमारे शिक्षा गुरु वामन महाराज जी और त्रिविक्रम महाराज जी मैं उनको उसी प्रकार से सम्मान करता था। वामन महाराज जी हमारे लिए जब मठ घर छोड़ करके आया सारी व्यवस्था वो करते थे मेरे लिए, और मैं प्रचार के लिए भिक्षा इत्यादि के लिए पूज्यपाद विक्रम महाराज जी के साथ में सर्वत्र जाया करता था। कीर्तन इत्यादि त्रिविक्रम महाराज जी ने मुझको करना सिखाया। वामन महाराज जी हमारे गुरु जी के अंतरंग सेवक और परिकर थे, उनकी कलम थे। बिना वामन महाराज जी के गुरु जी कुछ लिख पढ़ नहीं सकते थे। परिक्रमा के भीड़ में जहां पर कि सब लोग आए हैं गुरु जी से मिल रहे हैं, वामन महाराज जी उपस्थित होंगे, जो पत्रिका के लिए संपादकीय चाहिए, सब ठीक हो गया है और कल ही जाना है निशिंगपल्ली, अभी तक तैयार नहीं है, बस अच्छा अच्छा लिखो, और सब लोग बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं और उसके बीच में लिखा बोलने लगे। और वामन महाराज जी लिखते थे संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं, वामन महाराज जी का लिखना इतना सुंदर था, स्वर्णाक्षर बहुत सुंदर लिखते थे और उसमें कोई भूल नहीं होती थी जो सुधार करने की जरूरत है। त्रिविक्रम महाराज जी की भी लिखावट पूज्यपाद वामन महाराज जी के समान ही थी, वैसे दोनों बहुत योग्य थे, हमारे ऊपर में बहुत दोनों की कृपा थी। विशेष करके त्रिविक्रम महाराज जी के साथ में मैं रहा अधिक, उन्हीं के साथ प्रचार इत्यादि में जाना इत्यादि सब कुछ, कभी कभी वाद विवाद भी होता और गुरु जी हमारा पक्ष लेते थे, त्रिविक्रम महाराज जी कहने जाए ये भावुक है। वामन महाराज जी से हमारा कभी भी वाद विवाद नहीं, त्रिविक्रम महाराज जी से तो सब सब होता था, किंतु पूज्य पाद वामन महाराज जी से कभी नहीं हुआ। गुरु महाराज जी के बाद भी सुदीर्घ 35 करीब 35 36 वर्ष तक गौड़ीय वेदांत समिति ठीक रूप से चली। सब लोग मिल करके थे, विशेष करके हम लोग तीन आदमी, पूज्यपाद बामन महाराज, त्रिविक्रम महाराज और मैं, शुरू से ही गौड़ीय वेदांत समिति के हम लोग एकनिष्ठ सेवक थे। तो शुरू से ही और गुरु महाराज जी के अप्रकट होने के बाद 1968 से लेकर के 1904 तक, चार में पूज्यपाद बामन महाराज की भी कम महाराज, चार तक कितना हुआ, 35-36 वर्ष गौड़ीय वेदांत समिति सुस्त रूप से चली। क्यों चली? त्रिविक्रम महाराज निष्काम थे, उनको कोई पद की, रुपए पैसे की, प्रतिष्ठा की लालसा नहीं होती, निष्काम थे, इसलिए चले। दूसरे पूज्यपाद बामन महाराज जी परम सहिष्णु थे, परम सहिष्णु और गंभीर थे। यदि कोई बात होती उनके सेवक भी उनके पास कुछ कहते, कहते जाओ नारायण महाराज जी के पास में जाओ, मैं नहीं जानता, सब कुछ हमारे ऊपर में छोड़ देते। इसलिए समिति अच्छी तरह से चली। कुछ लड़के भी थे उद्धत, बामन महाराज जी के रहते सिर नहीं उठा सके, किंतु इन दोनों के बाद में कुछ सिर उठाना आरंभ किया। मैंने सोचा बांग्ला थे, अच्छा तो उस समय मैंने आमी क्या बोल रहा था, तो पूज्यपाद बामन महाराज बहुत सही सुनो, बहुत सब जो कुछ होता है कह देते जाओ नारायण महाराज जी के पास। आचार्य थे, सब कुछ उनके हाथ में था, किंतु बिना हम लोगों के परामर्श से, और हम भी कुछ भी करते देखते जब बामन महाराज जी से प्रसन्न होंगे कि नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए मैं उनका हृदय का भाव जान करके पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी से परामर्श लेकर के सब कुछ करता था। बामन महाराज जी एमन सहिष्णु छिलेन, हमार शिक्षा गुरु छिलेन त्रिविक्रम महाराज जी। तो आज के ताहा दे तिरुभाव किछु, आमी ताहा दे चरणे ते कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करी एंगु पुष्पांजलि अर्पण करछि। तारा जेखाने थे कहु ठाकुर हमार ऊपर ते कृपा करुन, अपना देर ऊपर ते कई बोले आमी संकेत से भक्ति सलाम करती परे आर कुछ न बोलू। एखन तार एकांत शिष्य
गुरुवे गौरचंदाय राधिकाय जनाय कृष्ण कृष्ण भक्त नमो नमः। Therefore, what we have heard from Shastra and Guru, according to their conception, that when a high class Vaishnava is speaking Harikatha, that time we should think it is better not to perform Parikrama of Govardhan or Navadvip or anything.
At the same time.
Because Giriraj Govardhan will only give mercy after the Vaishnavas have given us mercy. Giriraj Govardhan will not speak any instruction to us. Therefore, our hearts will not be purified so rapidly. Therefore, better for us to stay in Hari Katha than to perform any other activity at that time. Otherwise, we see so many Mayavadis and others are staying in Govardhan, but their situation is not changing. Therefore, Bhikkhusura in the Srimad Bhagavatam, he prayed, Manuttama Shloka Jagesu Satya. He also prayed for the chance to have the association with the Vaishnavas and to hear their kirtan. Therefore, whenever we get a chance for satsanga and kirtan, we must take that in precedence over any other activity. Then we should leave everything for Hari Katha, and afterwards we can perform parikrama or any other activity. By Hari Katha and satsang, you can get Raja Bhakti. Today is also a very special day. In this Kartik month, in this Ujjabrat, today is the disappearance of Vijayana Parishila Bhaktan Bhavan Maharaj. And exactly 1 year previous to that, was the disappearance of Pujapadjana Nisam Isla Bhaktan Chukra Maharaj. The book we never say that when he first came to the mark, both Pujapad Bhavan Maharaj and Pujapad Chukra Maharaj were Shiksha Gurus. Especially Srila Bhavan Maharaj, when he came to the mark, then he arranged everything for Gurudev, where to stay, how to eat. And I was always sent with Pujapad Chukra Maharaj on preaching and correction, and it was him who taught me how to perform kirtan. Srila Bhavan Maharaj had won many specialities, but especially he used to collect for the Gaudiya Patrika and Bengali magazine. Even that time it was Navadvip Parikrama, and the next day we were going to Nrsimhapalli. The Guru said, even today I can remember. That time we have to do some article, therefore Prabhupada would call Srila Bhavan Maharaj. Oh, right. And the midst of everyone, even though everyone was talking, Srila Pujapad Prabhupada would speak, but Srila Bhavan Maharaj would write. So his writing was so excellent in such great, perfect language. Even there was no need for any editing, it would directly go to the press. And Srila Prabhupada also had the same ability. But Gurudev said, always, especially he was so much together with Pujapad Srila Prabhupada. And when there was any argument, there was always some argument between them, then Prabhupada would always take my side. Take Gurudev's side. But he would always not take the side of Pujapad Srila Prabhupada. But with Srila Bhaktivinoda Bhavan Maharaj, there was not so much this argument.
Debate.
Therefore, after Padmavati's disappearance, for 36 years, the Gaudiya Sriji went in a very nice way. Because us three persons, Srila Bhaktivinoda Bhavan Maharaj, Bhaktivinoda Srila Maharaj, and Gurudev, were together. And there was no self-interest. How the Gaudiya Sriji was successful? Srila Bhaktivinoda Srila Maharaj was completely niskam. He had no desire for money, for disciples, or for name and fame. And Pujapad Srila Bhavan Maharaj was very, very humble and always giving so much respect to others, as well as being very brave. Srila Bhaktivinoda Bhavan Maharaj, even though he was a acharya and everything was in his power, still if any disciple would come and ask any question about management or some complaint, then Srila Bhaktivinoda Bhavan Maharaj would say, I don't know anything. You go to Srila Narayana Maharaj. There was a time when Pujapad Srila Maharaj and Pujapad Bhavan Maharaj was there. All disciples worked cooperatively and they kept their heads down. But as soon as they disappeared, some small boys raised their heads like they raised their heads and began causing disturbance. That is why for so long the Samiti, Gaudiya Samiti, went in such a nice way. Therefore today, on the disappearance of these two Mahapurushas, Gurudev saying, I am again offering millions of pranams and offerings at their feet, that they may give mercy to me and to all of us. Amen.
श्रीमान परिव्राजक महाराज बामन महाराज एकांत सेवक छे तार समय ते तेरी प्रचार इत्यादि विशेष कर अमर निर्माण कार्य इत्यादि जा किछु होय छे ओखाने सब इनार माध्यमे ते सब पूरी करे छे इनी कुछ तार गुरु पाद पद में कुछ हरि कथा परिवेशन करे तार चरणे ते पुष्पांजलि अर्पण
ओम अब्दाल सिमरन मुश्य गणना सवादा सब सूरु मिलितं जनतस्मै श्री गुरवे नमः मनसा बलपदर वर्ष कृपा सिंधु हेवत पतितानं पावन भो वैष्णवे सर्वाग्रे मोदी परम श्रीमदुर्पाद पद्म नित्य लीला संष्णुवाद श्रीमद्भक्ति वेदांत मामंद सिंह महादेव श्री चरण सरदेव हमारे अनंत की शासन दल प्रणति निवेदन कर तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म নারায়ণ পূজনীয় ভক্তবৃন্দ সবাই চরণে যথাযথ দন্ড নিবেদন করছি সবার কাছে কৃপা প্রার্থনা আজ আমাদের পরম আরাধ্যতম শ্রী রঘুপাদ পদ্ম নিত্য লীলা কৃষ্ণ বিষ্ণু বা আদর্শ তুলসী শ্রীরাম ভক্তি বেদান্ত মামন কৃষ্ণ মহাদেবের শুভ তিরোভাব তিথি গুরু বৈষ্ণবের কৃপা ভেতে রেখে আমাদের আর অন্য কোনো গতি নাই এই জন্যে সর্বাগ্রে গুরুপাদ পদ্মের বন্দনা করা একান্ত কর্তব্য তাই আমি করছি তার অহিতকী প্রার্থনা জানতে পরে তার চরণে নিবেদন জানাচ্ছি তিনি আমার উপরে কৃপা বর্ষণ করুন অহিতকী গুরুপাদ পদ্ম তিনি এই জগতের তিনি অপ্রাকৃত জগতের তিনি স্বরূপত মঞ্জরী স্বরূপা তিনি এই জগতে আসেন আমাদের মতো বদ্ধজীবকে কৃপা করে ভগবানের সান্নিধ্যে পৌঁছানোর জন্য এই জগতে আসেন এবং নিজে আচরণ করে তিনি এই জগৎকে জানিয়ে দেন যে এইভাবেই ভগবানের সান্নিধ্যে যেতে হবে বিশেষ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজেও দেখিয়েছেন কিভাবে উৎকণ্ঠা আকুলতা ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি এই জগতের মধ্যে দেখিয়েছেন দেখো বিরহ কাহাকে বলে এই বিরহ যদি না হয় তাহলে ভগবানের কৃপা আমরা লাভ করবো কি করে এটা বিরহ মানে ভগবানের কৃপা লাভ করে একটা ম্যাগনেট আকর্ষণ শক্তি বিরহ পার হবে কে বুঝবে এই বিরহের কথা গুরু মহারাজ বলতেন কথা বলতে গিয়ে বলতেন যে যে গাইল তো গেয়ে গেল যার ফাটল তার ফাটল গুরু বললেন যে বিরহ কথাটা খুবই ছোট কথা কিন্তু বিরাট বিরাট এর ভিতরে অনুভূতির জিনিস নিহিত আছে গৃহ মানে যিনি গুরুপাদ পদ্মের সঙ্গে যিনি সম্পর্কযুক্ত সভা নিষ্ঠা যুক্ত তিনি গুরুদেবের প্রশ্নকরের বিরহের মর্মের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। সুতরাং গুরু মহারাজের তো সেবা করার সেইরকম সৌভাগ্য আমার হয়নি, ওনার কাছে সেইরকম ভাবে অভিজ্ঞতা শোনারও সুযোগ হয়নি। যতটুকু উনি কৃপা করেছেন ওইটুকু সম্বল নিয়ে এবং আপনাদের সকলের এই কৃপা ভিক্ষা করে আমার জীবনে কিছু যদি আমি করতে পারি তার জন্য আমি চেষ্টা চালাচ্ছি। গুরুমহারাজ বলতেন যে দেখো, মনোবাস করতে হলে ওই দিক দিয়ে যাবে, যখন বাজার যাবে পরম পূজনীয় সিদ্ধান্তি মহারাজের মঠে, ওখানে একটু দর্শন করে আনবে। কি দর্শন করবে? ওনার গেটে আছে
কানে আঙুর,
মুখে এইগুলো এগুলো দেখবে তোমরা। গুরুমাকে বললেন যে এগুলো দেখার তাৎপর্য, গুরুজি বলে যে দেখো চোখ আসতে দেখবে কিন্তু কিছু বলতে যাবে না, কু দেখবে না আর কু শুনবে না। ভজন যদি করতে চাও তোমরা ভালোটা দেখবে খারাপটা দেখবে না, আর মুখে ভালোটা গুণকীর্তন করার অভ্যাস করবে, বৈষ্ণবগণের ভুল ত্রুটি দোষ দেখার আদৌ চেষ্টা করবে না, তাহলে তোমরা ভজন করিতে পারিবে না। প্রায় বাজার যাওয়ার সময় ওগুলো দেখে দেখে যাই, আসার সময় দেখে দেখে আসি। তাই গুরুমানকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, গুরুমানা কু দেখবো না আর কিছু বলবো না, এটা কি করে হয়? বলে ওইটাই তো হচ্ছে সাধন ভজনের প্রাথমিক অবস্থা। সুতরাং সহিষ্ণু, গুরুমানা বলতে চাচ্ছেন যে সহিষ্ণুতার গুণ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, বিশেষ করে যারা আমরা সাধন ভজন করতে যাচ্ছি। যদি সহিষ্ণুতার গুণ না থাকে তাহলে হবে না। গুরু মহারাজ বলছেন যে দেখো না আমি কিছু, এই যে গুরু হক অত সহজ, শুধু রোগী এসে প্রণাম করলো আমার শিষ্য হলো আমি গুরুদেব হয়ে গেলাম, এর যে ভিতরে কত যে জ্বালা তোমরা বুঝবে না। সুতরাং সহনশীলতা গুণ এটা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। গুরু মহারাজের নিজের জীবনীতে নিজেই উনি বলছেন মাঝে মাঝে কলকাতা মঠের মধ্যে বলতেন যে আমি যখন মঠে আসি তখন ওই বাচ্চা ছেলে আর কেউ ছিল না, আমি শুধু ছিলাম আর একজন ওদের ছিল। আমি সব বৈষ্ণব করে সেবা করেছি, প্রত্যেকের ঘটি বাটি যারা প্রাচীন বৈষ্ণব তাদের ওগুলো মেরে দিতাম, জল দিতাম, বিনিময়ে ওরা আমাকে স্নেহপূর্ণ একটা করে সুরক্ষিকাত আবার লজেন্স দিত। এইরূপ ভাবে আমি প্রচুর ছিল ওদের মাধ্যমে আমি শিক্ষা লাভ করেছি। তো সুতরাং সেবাই গুরু বৈষ্ণবগণের কৃপা লাভের একমাত্র পথ। সেবার দ্বারা আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের কৃপা আশীর্বাদ পেতে পারি। গুরু মহারাজের নিজের জীবনীতে উনি দেখিয়েছেন, আর সহনশীলতার গুণ তিনি তার জীবনে তিনি দেখিয়েছেন। এমনকি গুরু মহারাজ বলতেন যে এই সুন্দরবনে আমরা যখন যেতাম, সুন্দরবনে প্রচারে কেউ যেতে চাইত না, কারণ একটুখানে কষ্ট। এখন ইদানিং তো অনেক সুবিধা হয়েছে কিন্তু আগে এগুলো কিছুই ছিল না, খুব কষ্ট করে যেতে হতো। আর গুরু মহারাজ যেতেন আর তখন ছিল লঞ্চ আর নৌকা ছিল, এখন তো মেশিন লাগানো হয়েছে, তখন মেশিন লাগানো ছিল না। লঞ্চে গেলে অর্ধেক অন্ততকে 30-40 ফুট
থাকে তার করে দেয়, কারণ পারে যেতে পারে না, লেগে যায়। ওইখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়, নেমে এত করে কাদা আর জল। গুরুমার ধর্মতে অনেকেই এসে শিষ্যরা ওখানে ছিলেন, অনেকে ওরা ধরতেন, কিন্তু ধীরে ধীরে ওরাও ওই কাদার মধ্যে ডেবে যেতেন। গুরুমার ওই ভয়ে কষ্ট করে প্রচার করেছিলেন। গুরু মহারাজ তিনি স্মৃতিধর ছিলেন, যা কিছু তিনি শ্রবণ করেন তিনি নিজের হৃদয় পটে ওটা অঙ্কিত করে রাখতে সমর্থ ছিলেন। এই জন্যে গৌড়ীয় সবাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সবাই বলতেন যে উনি হচ্ছেন গৌড়ীয় মঠের ডিকশনারি। গুরু মহারাজকে আর আমি যতদিন ছিলাম, আমি 70 এসেছি মঠে, ততদিন পর্যন্ত গুরু মহারাজের সান্নিধ্যে যতটুকু পেয়েছি সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ, কোনদিন কাউকে রাগ করার কোনদিন দেখিনি গুরু মহারাজকে। একটা রাগ করে দেখি কিছু বলবেন, শাসন করবেন না, রাগ করেন, শাসন করার ভার দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, পুজো দীপিক মহারাজের উপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে তিনজন হচ্ছেন গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির স্তম্ভ। মহারাজ বলতেন যে আমি দীক্ষা দিলাম, পালন করার ভার আপনার, আর ত্রিবিক্ষ মহারাজ শাসন করেন। প্রথম প্রথম ত্রিবিক্ষ মহারাজের শাসনটা আমরা অতটুকু বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি যে বৈষ্ণবগণের শাসন মানে ওটা স্নেহ। গুরু মহারাজের পরে ব্যাখ্যা করে বুঝেছেন যে না না, বৈষ্ণবগণের শাসনটা শাসন নয়, ওটা হচ্ছে স্নেহ। যদি শাসন করা না হয় না, তাহলে তার কিছুতেই মঙ্গল হতে পারে না। যিনি শাসন স্বীকার করবেন না তার মঙ্গল কোথার থেকে হবে? সুতরাং শাসনটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। পরবর্তীকালে আমরা ওটা আস্তে আস্তে ভজন সাধন করতে গেলেই ওটা উপলব্ধি হয় যে গুরু বৈষ্ণবগণের শাসনটা কি ধরনের স্নেহ। আমরা যতগুলো উদাহরণ দেখতে পাই সবগুলোর মধ্যে নিহিত আছে যে সুখতা অর্জন। যেমন শিবা ঠাকুর রথের সময় প্রতাপ রুদ্র রাজার একটুখানে আড়াল হলো, আর বারবার ওনাকে ধাক্কা মারছে যে তুমি একটু সরে যাও, আমি রাজার তো কর্মচারী, তা আমার তো কর্তব্য আছে একটুখানে ওনার সুবিধা করে দেওয়া। এরকম 2-3 এরকম করাতে তিনি পিছন ফিরে আর কাপড় মেরে দিলেন। উনিও আবার একটু তাকে সত্য নেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু প্রতাপ রুদ্র রাজা বুঝতে পেরেছেন। হ্যাঁ, তিনি বলে খবরদার তোমার পরম সৌভাগ্য, বৈষ্ণবগণে হস্ত স্পর্শ পেয়েছ। এর দ্বারা বুঝে যায় যে যেমন নারায়ণ সিংহ প্রত্যেকটা উদাহরণ আছে আমাদের বৈষ্ণবগণের শাসন ওটা আছে স্নেহ। এটা আমরা সহজে প্রাথমিক স্তরে বুঝতে পারি না, কিন্তু এটা স্নেহই বটে। তো গুরু মহারাজ তিনি সহনশীলতা গুণের দিক দিয়ে তিনি চরম অবস্থায় ছিলেন, আর কাউকে তিনি শাসনও করতেন না। মৃদু ভাষায় তিনি বলতেন, বাবা তোমাদের এটা করলে ভালো হয়, এটা করলে মন্দ হতে পারে, তবে গুরু বৈষ্ণবগণের কাছে জিজ্ঞাসা করে তোমরা যা শুধু করছো। সবসময় আমাদেরকে ফেলে দিতেন মহারাজের কাছে, আমরা তাই মহারাজের সাথে, আর মহারাজ আমাদেরকে নিজের পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। গুরু মহারাজ তিনি তো দীক্ষা দিয়ে তিনি তো সেই সময় আমাদের গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অত আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, এই জন্য গুরু মহারাজ সবসময় তিনি প্রচারে যেতেন, আর আমরা আমাদেরকে রেখে দিতেন, আর বলতেন যে তোমাদেরকে প্রতিপালন করবেন মহারাজ। মহারাজও 3 ক্লাস করে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন। সুতরাং গুরু মহারাজ তিনি অপ্রাকৃত বস্তু, এই জগৎ তিনি শোধন করার জন্য তারা এই জগতে এসেছিলেন। আর তিনি এক সময় পরমগুরু মহারাজ আদেশ করেছিলেন কলকাতার কাজ ছেড়ে তিনি ওই কৃষ্ণচন্দ্রপুর যাবেন, ওখানে আমাদের এক পিসিমা আমাদের ঠাকুমা মোরা বলেছিলেন ওনার কাছে কিছু আর্থিক নেওয়ার জন্য। তিনি গিয়েছেন, আর ট্রেনের একটু লেট ছিল, যেতে যেতে রাত্রি 12 বাজে, জয়নগর থেকে নেমে তিনি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন, আর ওখানে ওই মোড়ের মধ্যে একটু ভূত আমার বিশেষ করে আমার উপরে তিনি কৃপা আশীর্বাদ করুন। শ্রীল মহারাজির চরণে নিবেদন জানাচ্ছি, তিনি আমার উপরে কৃপা বর্ষণ করুন। আমার তো মাঝে মাঝে বিরাট রাগ হয়, অভিমান বসত অনেক কিছু দেবতা করে থাকি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার বক্তব্য আমি এখানে সমাপ্ত রাখছি।
বেশ সুন্দর মহারাজের জীবন চরিত্রে বৈশিষ্ট কিছু বর্ণন করেছেন, আরো বহু কিছু আছে। শ্রীমান গোবিন্দ মহারাজ তাহার লেখালেখি সব কিছু গৌড়ীয় পত্রিকার ভার সব কিছু নিয়ে তাহার অন্তরঙ্গ সেবা করেছে। যেরকম হতে গুরু মহারাজের বামন মহারাজ লেখালেখি করতেন ওইরকম ভাবে করেছে, ওই তাহার অনুভূতি তাহার সঙ্গে কিরকম ভাবতে দেখা ইত্যাদি হল এবং তাহার কৃপা পেল আর তাহার বৈশিষ্ট্য এ সম্বন্ধে কিছু বলে তাহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ।
আমাদের মঠের মানসিক সাধারণ সভাতে কিছু মত সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছিল। যখন আমি পূজ্যপাদ মহারাজকে এমন কিছু কথা বলেছিলাম, মহারাজ আমার বড় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু দেখলাম পরবর্তী দিনে মহারাজ আমাকে নিজে ডেকে আদর করে বলেছেন, দেখো এই কথাটা তো তোমার নয়, তুমি সকলের কথাটাই তুলে ধরেছ মাত্র। যারা মঠের ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে দেখাশোনা করে তাদেরকে কিছু বলতে হয়, রূঢ় বাক্য হলেও সেগুলো বলতে হয়। তুমি আমার বিরুদ্ধ কিছু বলো নাই, এর জন্য আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি। তোমরা যে এখন থেকে এই মঠ বেদান্ত সমিতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করছো, এটা দেখে আমার খুব আনন্দ লাগছে। এবং মহারাজ তখন বিপাশীর্বাদ করেছিলেন যে পরবর্তীকালে মতো তোমরা বেদান্ত সমিতির হাত ধরবে। গুরু মহারাজের শেষের দিকে যখন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, তার কাছেই ছিলাম আমি। একদিন প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে গুরু মহারাজের, তিনি রিয়ালিস হসপিটাল বেডে শুয়ে আছেন। দুই দিন গুরু মহারাজের ঘুম নেই, আমারও ঘুম নেই। রাত্রি যখন 11টা, তখন আমি ঘুমিয়ে পড়ে আছি, গুরু মহারাজ দেখছি আমার গলায় হাত দিয়ে গলা জড়ি ধরে আছে। আমি বলছি আমি একটু ঘুমান। গুরু মহারাজ বলছে তুমি তো ঘুমাচ্ছ, আমি কি করে ঘুমাবো? তখন বলছেন, দেখো বাবা বলে ছেলের জন্য অনেক কিছু করতে হয়, তোমরা তো আমার সন্তানের মতো, তোমরা যা কিছু করো আমি তো আর থাকবো না, আমি তো ইনফাইল হয়ে গেলাম, অকর্মণ্য হয়ে গেলাম। পূজ্যপাদ মহারাজ আছেন, মহারাজের আনুগত্যে তোমরা সাধন ভজন করবে। তিনি বারবার এই নির্দেশ দিয়েছেন, যখন আমাদেরকে যখন কোনো কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তিনি সবসময় নির্দেশ দিয়েছেন রঙ্কুতি পদক করে যে কোনো সময়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তিনি বলতেন তোমরা মহারাজকে ফোন করো, মহারাজের বিনা নির্দেশে তোমরা কোনো কাজ করবে না। একবার গুরু মহারাজ বছর পাঁচে কাছে হবে, গুজরাত মহারাজ দিয়েছেন দলের সময়, গুরু মহারাজ এবং নারায়ণ বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে মহারাজের সঙ্গে। মহারাজ বলছেন, মহারাজ আমি আগে চলে যাব। গুরুমা বলছে, না না তা হবে না, আপনি কি চলে যাবেন, আমি আগে যাব, তারপর অনেক কিছু হয়তো হবে, সেগুলো আপনাকে সব ঠিকঠাক করে এদেরকে বসিয়ে রেখে তারপর যেতে হবে। তাই আজ মহারাজ আমাদেরকে গুরুদেবের ন্যায় রক্ষা করে চলেছেন। আজ বেদান্ত সমিতির এই কঠিন সময়ে তিনি আমাদেরকে নিজের সত্র ছায়াতে রক্ষা করছেন। শ্রী গুরু মহারাজের যে সজ্জগুণ তা আমরা লক্ষ্য করেছি, তিনি শারীরিক অসুস্থতা তো সজ্জগুণ তো আছে, তাছাড়াও মঠের বহু বহু কঠিন সমস্যার সময় দেখেছি তিনি কিভাবে কষ্ট স্বীকার করতেন, আপনি কিছু বলতেন না। হয়তো আমরা অনেক সময় বলেছি আমি বেশি যে আপনি কেন কোনো জবাব দিচ্ছেন না, আপনার পাওয়ার টানতে আপনি কেন পাওয়ার কাছে লাগাচ্ছেন না। বলছে, আরে পাওয়ার যখন তোমরা পাওয়ারে যাবে তখন বুঝবে, পাওয়ার থাকলেও পাওয়ারকে কাজে লাগানো যায় না। তাই সেটাই এখন আমরাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখছি যে হ্যাঁ বাস্তবে অনেক কিছু করে অসুবিধা হয়। তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু যা কিছু করতেন সব কিছু, আমরা অনেক সময় তো রাগ করে বলতাম বেদান্ত সমিতির কর্তৃপক্ষ যেটি আছে আজ আমরা বুঝলাম না, তখন বলতে কেন কর্তৃপক্ষ তো মহারাজ একজন আছেন, যা কিছু করার তোমরা সব কিছু মহারাজের আদেশে নিয়ে করো, তাতে আমিও খুশি হব, মহারাজও খুশি হবেন এবং সমিতি ভালোভাবে চলবে। তাই এখনো পর্যন্ত আমরা মহারাজের শ্রীচরণ কমলে নাম শস্ত্র ছাড়াতে চলছি, এবং ভবিষ্যতেও যেন আমরা মহারাজের চরণ কমলে তাঁর ছত্রছায়ায় থাকতে পারি এই আশা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।
সুন্দর অনেকগুলি স্মৃতি জাগাই। এখন শ্রীমান ভক্তিবেদান্ত
হরিজন মহারাজ ওরা
সর্বপ্রথম পরমানন্দ গুরুপাদ तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासी वृंद, समस्त वैष्णवजन, समस्त माताएं बहनों, स्वरूप को मेरा प्रणाम भी है। जबकि मैं छोटा सा बालक था उस समय 74 में सर्वप्रथम मैं महाराज जी की श्री चरण स्पर्श में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम उनका दर्शन हुआ महाराज से, उनके चरणों में प्रणाम किया। तब उन्होंने मेरा नाम नाम कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने कहा तुम आ जाओ, तुम्हारे जीवन का सब कुछ हम ग्रहण करते, तुम्हारा उत्तरदायित्व सब कुछ मेरे हाथ में। उस समय मैंने कहा अच्छा आ जाओ, उन्होंने कहा तीन दिन में आ जाना, ऐसा आ जाओ। मुझे कुछ भी पता नहीं कि कौन से साधु है क्या है, मुझे जीवन में ये भी स्वप्न में भी कल्पना नहीं था या कल्पना में भी नहीं था कि मुझे साधु बनना पड़ेगा और इस लाइन में आना पड़ेगा। फिर भी ऊपर वाले की इच्छा है कि महाराज जी के चरण में उनका दर्शन हुआ। उसी समय इस दिन में जबकि हम मंदिर में आ गए नवद्वीप में, इसके पश्चात महाराज से नहीं जो कि गुरु जी के चरण कमल में ले जाकर के उनसे मंत्र दीक्षा दिलवाई और स्वयं ने भी मंत्र दिया और इसी तरह से दोनों ने ही मंत्र दान किया और साथ ही साथ तब से मंदिर में और महाराज जी के श्री चरण स्वरूप में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय मैं नवद्वीप में भंडार डिपार्टमेंट में रहा तो कुछ व्यवस्था में ही रहा, तो उस समय सभी बच्चे हंसी मजाक करते थे, हमें कुछ आता ही नहीं, श्लोक भी याद नहीं होता था। ऐसे समय में फिर 2 साल बीतने के बाद में जब महाराज जी मथुरा में आए, उस समय अंदर से प्रेरणा सब कुछ तो दे दी परंतु ऊपर से मैं आ नहीं पाया तो मेरा मन बहुत खराब रहा। गुरु महाराज जी ने मुझे एक दिन 4 घंटे तक समझाया और 4 घंटे तक 4 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक पूरा समझाते रहे। उस समय गोपीकांत प्रभु जनार्दन महाराज जी बोले गुरु जी अभी आपको जाना पड़ेगा काम रूप में, 9 बजे गाड़ी है, 8 बजे तक 4 घंटा बोलते चले जा रहे। तो गुरु जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें मैंने 4 घंटे बताया और तुम एक भी शब्द कुछ भी नहीं बोला, क्या बात है, कोई जवाब भी नहीं दिया। उस समय मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी चाहे दुनिया कहीं एक तरफ पलट जाए और आप 4 घंटे क्यों 40 घंटे तक ही समझा लें, फिर भी मैं महाराज जी को मन से दिल से हटा नहीं पा रहा हूं, मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं और ना मैं कभी भूल सकता। तो आप कृपया मुझे आदेश दें, हमें मथुरा जाना, मैं महाराज जी को छोड़ नहीं सकता। उस समय गुरु जी ने कहा जा, मैंने 4 घंटा सुना करके अभी तुम्हें जब सुना नहीं सका, अच्छा तुम जाना। तो उस समय गुरु जी ने जल्दी से जल्दी प्रसाद लिया, मैं अभी भंडार से घूम घाम करके निकल करके आया, एक माला लिया, फूल माला लेकर के नाट्य मंदिर में जैसे ही उनको प्रणाम करते समय इसके पश्चात मैंने माला पहनाया। तो गुरु जी ने मुझसे कहा देख तुम मथुरा में जा रहे हो, वहां ना चावल मिलेगा ना मीठा पानी मिलेगा और ना कोई ठंडी हवा मिलेगी और बड़ा कष्ट है और बड़ी परेशानी होगी, तुम 2-3 महीने के अंदर में आएगा या नहीं ये बात मुझे बता करके जाओ, तुम बचन दो। मैंने कहा गुरु जी जब आपके चरणों में समर्पित हुआ, जीवन भर हम आपकी सेवा में ही रहेंगे, हम कहीं हटेंगे नहीं, और हम आएंगे लौट के, पर हम और कहेंगे लौट के, ये मैं नहीं कह सकता, मैं जरूर आऊंगा, मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, परंतु आप महाराज जी के पास जाने को आज्ञा दें। उस समय गुरु जी ने स्टेशन में जाकर के जिन्हों ने किराए का पैसा दिया मेरे लिए, मथुरा जाने का किराए का पैसा दे, जब महाराज जी ने पहले ही मधुसूदन महाराज जी के पास में रख दिया है और वो पैसा, और फिर से दे दी, तब दूसरे दिन गुरु वैष्णवों की आज्ञा ले करके और उस दिन भोजन प्रसाद भी बनाया बना करके आया, और वहां से फिर महाराज जी के चरण स्वर्ग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब उनकी कृपा आशीर्वाद मिली, सभी लोग पूछते हैं आप तो कभी पढ़ते नहीं, कुछ करते नहीं है, क्या बात है, कहां से होते हैं, हमें तो पता ही नहीं, हमें कुछ भी, हमने तो पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया, जो कुछ महाराज जी का गुरु जी का आशीर्वाद है। और दूसरी बात, जब जब मैं गुरु जी के पास जाता रहा तो पहले शुरुआती में क्या होता था, गुरु जी देखता हूं कि बहुत से महिलाएं बैठी रहती हैं, बहुत से भक्त लोग बैठे रहते हैं, तो उनके सामने कुछ भूतों का गल सुनाते थे, कहानी सुनाते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप बार बार केवल भूत का ही कहानी सुनाते हैं और कोई भी हमें सुनने को मिलता नहीं है, अच्छा नहीं लगता हमें, आप ऐसा क्यों रहते हैं। गुरु जी बोले थे ये तो साधारण है, इनको कोई तत्व दर्शनी की कथा कुछ हरी कथा सुनाओ, ये उठ के भाग जाएंगे, ये सुनेगा इसकी क्या, अगर भूतों का गर्म सुना तो हंसते ही रहेंगे और हंसे दिए के नहीं चलेगा, तो इसकी इनको यही सुनाता और इसी के माध्यम से कुछ ना कुछ भूतें सुना देता तो मुझे अच्छी बात। मैंने कहा गुरु जी हमारा मन नहीं भरता है, हमारा बहुत कम समय है जो कि आपके पास आता, आप हमें ऐसा कोई बात सुनाइए जो कि नई नई बात हमें हमें सीखने को मिल जाए, बोले ठीक है तुम जब आएगा हम कुछ बताएंगे। और ऐसे ही गुरु जी उस समय क्या करते, हमेशा ही कहते वेदांत की बातों को कहा करते और बार बार वही प्रेरणा देते, बोलते क्या, बोले आचार्य श्री रामानंद, श्री मनमध्याचार्य, श्री शंकराचार्य, ये बड़े बड़े आचार्य लोग भी और जल्दी से जल्दी उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और व्यापक रूप में प्रचार किया इस बात को सोचा करो और वेदांत की बात सुनाया करते, तो ऐसे ऐसे वेदांत की बात सुनाते। और जब कभी जाओ गीत गोविंद का एक श्लोक अवश्य कहा जाएंगे, यदि हरि स्मरण सरसम मन, स्मरण कला विलास पुत्र फलम, मधुर गोपल कांत पदावली श्रीणु कदा जय देव सरस्वती। बार बार इस श्लोक को दोहराते, बार बार करते बोले इस श्लोक का याद कर और इसमें डूबना। गुरु जी कहते देख भजन तुमसे नहीं हो पाएगा, कितना भजन करेगा, कहां तक दौड़ेगा, एक काम कर, यदि भजन करना है तो रोना सीखो, गुरु वैष्णव और गुरु भगवान के लिए रो, तब भजन हो जाएगा, नहीं तो और भजन नहीं होगा। हमेशा विरहवी प्रलंबों में और गंभीर भावों का मैं रहते, बाहर कभी प्रकाश नहीं करते। इस प्रकार पहल सी बातों को कहा करते। एक बार गुरु जी ने आक्षेप करके कहा, बोले कि देखो मैंने बहुत प्रयास किया पर प्रचार में निकल जाने से समय उसी में निकल गया, बीत गया और समय भी निकलता चला गया। मैं चाहता था कि वेदांत के गवित भाषण पर कुछ विशेष व्याख्या नहीं करके राधा पर व्याख्या नहीं करके उसको लिखने की इच्छा, पर मेरे जीवन में हो नहीं पाया, इसके तुम लोग इस पर ध्यान रखना है। और बहुत से ग्रंथों का नाम भी बताया इस तरह से आचरित शब्द नहीं होता है। मैंने कहा गुरु जी मैं महाराज जी के पास में रहता हूं और उनसे जो कुछ सीखने को पढ़ने को हम लोग सीख रहे हैं पढ़ रहे, परंतु मेरी इच्छा है कि आप हमें और कुछ सिखाएं। आपके पास अगाध ज्ञान भंडार जो कि समुद्र के समान और ऐसे समुद्र के समान और इतने श्लोक कहा करते कहां कहां से बोलते हैं और कितना श्लोक सुनाते हैं जिसकी कोई ठिकाना नहीं। मैंने पूछा गुरु जी आपको इतना श्लोक याद कैसे हुआ, कहां से आपने सीखा और कैसे आपने आप ध्यान किया क्या किया। तब उन्होंने अपने बचपन की कहानी सुनाई। भक्ति विनोद श्री भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में पढ़ते समझ परम गुरु महाराज जी ने जैसे उन्हें श्लोक सुनाया और सभी ने श्लोक सिखाया इसी तरह से श्लोक सीखते हैं। दूसरी ओर बोले कि मेदिनीपुर में जब की गुरु उन्होंने कहा उनके गुरु जी यानी परम गुरु महाराज जी जब किताबों को लिखने के लिए सारे प्रमाण को संग्रह करना होता और उनको भेजा तब वे बोले कि मैं मेदिनीपुर में गया वहां एक राधा प्रभु थी तो उनके साथ वहां के लाइब्रेरी के सारे किताबों को देखने को मिला और एक एक करके पूरा छांटा चला लिया देखता गया और सारा कोटेशन लाया। तो वो सब देखने से मुझे एक तरह से पूरा पढ़ना हो गया, इसलिए सभी शास्त्रों को पढ़िए। इसी प्रकार मैंने एक बार कहा गुरु जी आप हमें और कुछ सिखाइए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे भी कुछ ज्ञान गरिमा संग्रह करूं और आपसे हमें कुछ प्राप्त हो। तब ये बोले महाराज जी को और गुरु को कभी भी अंतर मत देखना, कभी भी भेद दृष्टि से मत देखना, जो हमारी शिक्षा है उन्हीं की शिक्षा है, उन्हीं की शिक्षा ही हमारी शिक्षा है, दोनों में जो कहीं अंतर देखेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। यदि देव महाराज के आज गुरु महाराज के मध्य परस्पर यदि कोई भेद दृष्टि से देखे तो निश्चित रूप से सर्वनाश हो गुरु महाराज बोलते हैं। एवं तीन चीज एक बार पत्र तीन जाए प्रभु कृपा करुणा थी तारा सुदूर पर आनंद वंचित आवाज तीन बोलें एक बार पत्र मत लिए एक बार पत्र के द्वारा उन्होंने कहा जो मुक्त होता है वही दूसरों को उद्धार कर पाता है मुक्त कर पाता है, जो तैरना जानता है वही डूबते भी एक दूसरे को बचा सकता है, जिसको तैरना आता नहीं जो मुक्त नहीं होता दूसरों को कदापि मुक्त नहीं कर सकता। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत से तत्व विषय तत्वों को सिखाया और बताते हैं हम लोग जब कभी आते कुछ न कुछ टुकड़ी भुगड़ी करके कुछ न कुछ उल्टा सीधा प्रश्न करते पूछते तो गुरु जी यद्यपि वे गंभीर है फिर भी हम लोगों को अपना बालक ध्यान करके वे सुनाते। एक बार मैंने पूछा कोलकाता में गुरु जी इतना सारा मंदिर है आप और इतने मंदिर हैं तो आपको कौन सी जगह अच्छा लगता है, कहां आप रहना पसंद करते हैं। उस समय गुरु जी बोले कि मुझे सिलीगुड़ी में मिलनपल्ली में अच्छा लगता है। मैंने कहा कि हूं आप इसका भी उत्तर दीजिए क्यों आपको अच्छा लगता है क्या खास। उस समय गुरु जी बोले बोले देखो सुनता आपने इतना सारा मंदिर है और जहां कहीं जाओ लोग खूब सेवा करेंगे खूब खिलाएंगे पिलाएंगे कोई हरी कथा सुनने को नहीं आएगा, कोई हरी कथा सुनना नहीं चाहेगा। सिलीगुड़ी जाने से कम वहां कुछ हिंदुस्तानी भक्त लोग हैं और भी कुछ बंगाली भक्त लोग हैं, आश्रम में बैठ करके सुनते कुछ कथाओं को हम कह पाते, यदि हम लोग कथा कीर्तन नहीं करें कुछ बोले नहीं तो दिन भर खाए पिए जो है हम लोगों का जीवन ही धीरे ही निकलता है और हमारा अच्छा भी नहीं है। इसलिए मेरा अच्छा लगता है कि कुछ लोग हरी कथा तो सुनते। तो इस प्रकार जब जब कुछ न कुछ ऐसे पूछते थे सुनता था उत्तर दिया करते। एक बार मैंने गुरु जी से इसलिए शरण खुले में पूछा कि गुरु जी महाराज जी के पास मैं जब कभी जाऊं, और कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है कि जब कोई काम नहीं है महाराज जी पूछ लेते हैं, बोले कोई काम है अभी? मैंने कहा कोई काम तो अभी दिखने जा और कोई काम तो महाराज जी का जा वेदांत और पुराण और श्रीमद भागवत सभी ग्रंथों से ये जीव स्वरूप जीव तत्व को निकाल करके आओ छाड़ो। तो हम देखते हैं कि जीव तत्व तो हमेशा ही यही बात आती है और जीव का स्वरूप जीव का स्वरूप और ये तो हमेशा ही दिमाग माटा खोली करती रहती। अच्छा चलो कोई बात नहीं और ये तो हमेशा ही सुनते रहे। तो गुरु जी से पूछा कि गुरु जी जीव तत्व पर बहुत सारी बातें आती है और बहुत से लोग बहुत कुछ कहा करते हैं, आपका भी विचार हम सुन लें तो आप हमें कुछ बताइए। तो शरण गुरु जी इतने प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के दो तीन घंटे तक बोलने ही चले गए। ब्रजेंद्र ठाकुर जी के किताब को पुस्तक खोल करके पुनः पढ़ करके और पूरा के पूरा कीर्तन एकदम बताते चले कि मैंने कहा बहुत हो गया अभी तो समाप्त कर तो भी नहीं गुरु जी बोलते ही चले। एक बार सिलीगुड़ी में गया तो गुरु जी के पास में प्रणाम करके मैं खड़ा था। इतने में शरीर अस्त अस्त होते हुए भी गुरु जी रस तत्व पर विवेचन कर रहे और बोलते जा रहे बहुत सारे रस तत्व पर पांचों रस पर और रस तत्व पर खूब विवेचन कर रहे और खूब बोलते जा रहे और हमें सुना रहे। इतने में भजन पूर्ण जो कि गुरु जी का सेवक था उस समय प्राय डेढ़ दो घंटा पार हो गया। गुरु जी बोलते जा रहे मैं खड़ा हूं सुन रहा हूं और मुझको ही बोले भजन गुरु बोले गुरु जी आपकी तबियत खराब है आप इतनी देर बोलते जा रहे हैं अभी तो बोलना बंद कर दीजिए। उस समय गुरु जी उस पर बिगड़ गए बोले तुम जानते हो मैं किसके साथ बात कर रहा हूं या तुम बाहर निकल जाओगी तुम सुने जो गड़ी हो जो बात मैं कह रहा हूं उनसे कह रहा हूं उसको कह रहा हूं। तो इस तरह से गुरु जी का अपार स्नेह करुणा हर बातों को सिखाते थे। इसी प्रकार जिन्होंने असीम अपार करुणा की उनके साथ जीवन में एक दिन झगड़ा भी किया था। संन्यास के पहले दिन रात में जाकर के गुरु जी के घर में पुनर् बुला लिया बोले कि आज तो झगड़ा करना पड़ेगा कि गुरु जी से सब प्रकार की बातें होती है एक दिन झगड़ा भी कर लिया जाए जीवन में यही सब निकालना पड़ेगा। तो अब गुरु जी बोले हैं तुमने सन्नाथ हम देख रहे हम कहते हैं नहीं हम सन्नाथ नहीं क्यों देखे हो चाहिए किस कारण और इसी बात पर बहुत ज्यादा मेहनत करता चला गया बहुत झगड़ा की बात किया। तो उस समय गुरु जी ने बहुत सारे अंतर से बातें सुनाई। इसी तरह से आज ऐसे महान गुरु जी जिनकी असीम कृपा करुणा निरंतर हम लोगों के स्मृति पाठ में जागरूक रहे मेरे आज भी नित्य वर्तमान में जिस समय रूप सनातन में आए उस समय एक बार भागवत सप्ताह चला था महाराज जी भी थे गुरु जी आए उनकी पूजा अर्चना दी और बड़े विनय अर्थी के साथ उन्होंने अपने हृदय का उद्गार वर्णन किया। इस प्रकार जो अत्यंत गंभीर ज्ञान के अपार समुद्र और भक्ति रस के परंपार ऐसे महान के चरणों में आज हम भ्रष्टाचारी सवार करने ये कृपया हम सबको परीक्षा को जरूर से
बहुत अच्छा। और श्रीमान डॉक्टर माधव महाराज जी संक्षेप में उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें।
जो सेवा देवानंद स्वामी जी के आप ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये संभव नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। जब हम पहले बार विदेश प्रचार में गए थे 1996 में, उस समय जब हमारी याद दिलाया तो महाराज जी रोते ही चिट्ठी निकाले गुरु महाराज जी को, तो महाराज जी आप क्या कहा था अब मैं समझ रहा हूँ, मैं विदेश में आकर के सफलता के साथ प्रचार करूंगा, मैं कभी नहीं सोचा था। ये गुरु महाराज पर जो हमारी कृपा है और आप लोगों का भी अशेष आशीर्वाद है, ये भी संभव नहीं था। ये गुरु महाराज जी पहले ही मुझे बता दिया था कि आपको विशाल काम करना पड़ेगा जो किसी तरह नहीं होगा। जब मेरा दीक्षा हुआ था, दीक्षा के दौरान गुरु महाराज ने मुझे बताया कि महाराज के साथ मथुरा जाना है। मुझे नहीं पता था कि कब चावल मिलेगा, ये सब कुछ नहीं पता था, मैं सीधा आ गया। कुछ महीने के बाद परिक्रम के बाद गया था, बहुत गर्म है। जब गुरु महाराज कुछ महीने के बाद आए थे, साथ में सुंदरानंद प्रभु था, मैं बताया गुरु महाराज जी इधर मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, इतना गर्म मुझे सहा नहीं आता है। तो गुरु महाराज ने रोज मुझे जुप्ती दिया, उनके बाद जुप्ती कहकर खंडन किया। आखिर में गुरु महाराज ने पूछा, सही बता शिक्षा कर्तव्य प्रधान कर्तव्य क्या है, मैं बताया गुरु पादपद्म की प्रीति विधान करना सबसे बड़ा कर्तव्य है।
ऐसे में अपने घर की व्यस्त
की चिंता करते करते मैं दादू जन्म बन गया। और ये करना भी क्यों प्रकट ये याद रखना भी बताने के बाद देखो ये जगत में हमें पूछा कि सब लोग भजन करने मठ में आए हैं वो केवल बहुत उन्नत हो जाते हैं आज कुछ लोग उन्नत क्यों नहीं होते कारण क्या है। तब गुरु ने बताया कि देखो एक समय एक बंदर को बजाने वाले बंदर को ले जाकर खेल दिखाते पैसा रोजगार करते तो बंदर क्या रहे हैं किसी ने सागर उतारा कोई सिखाया नहीं कई खड़ा गिरी रखा कोई किया वाणी क्या कुंभ सीता नाथ को मैंने क्या चोरी सही वंशज भव हम वेद्या की चोरी किसने सागर उतारा कौन हनुमान जी कोई बंदर कुल नहीं आ रहे थे रामचंद्र भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की शक्ति सीता देवी को रावण मरने के उपरांत ढूंढने के लिए हनुमान जी सबसे पहले सागर को सागर को लौटाने गए थे। और कोई किया वाणी सुग्रीव भी बंदर वंश में आए आकर के भगवान से इत्तेफा की कोई उखड़ा गिरी दरकर समुद्र मंथन के समय हनुमान नौ बहुत से बंदर जाकर के गिर पर उठा कर लाते थे समुद्र मंथन के लिए और बंधन के लिए कोई सिखाया नहीं। अरे अंतिम समय में बाली मर गया था सुग्रीव लड़ाई में जब रामचंद्र को मारा था उस समय की नीति सिखाया था कोई सिखाया नहीं क्या कहूँ सीतानाथ को मैंने क्या चली मैं सीतानाथ रामचंद्र क्या कहूँ मैं उनसे पूछा था तुमने क्या चोरी किया है जैसे कोई चोरी चोरी करता है तो हाथ में बांध करके उनको ले जाते हैं जैसे मैंने क्या चोरी किया जो बेदिया जो खेल दिखाता है अपने गले में फांस लगा करके कल को सोच रहा है ऐसे ही हम सब भगवान के विभिन्न होने पर भी जो जितने अधिक शरणागत है वो उतना अधिक भले उन्नत लाभ करते हैं जो अपने स्वतंत्र का अव्यवहार करते हैं वो उन्नत नहीं हो सकते हैं। याद रखो बंदर गोले में गोली बंदर हमें कोई घुमा नहीं हम गुरु परमात्मा के चरण में ऐसे स्थिति करना तो भले उन्नत लाभ कर सकता है। एक समय कुछ जो त्रिपुर महाराज जी गुरु महाराज जी मथुरा में आए थे मुझे टिकट के लिए बताया था मैं टिकट करके लाया था मेरी गलती और कैसे गलती के लिए मैं आबाद हुआ। जब गुरु महाराज जी का सब चले गए रेस्टोरेंट से वापिस आए बताया गुरु महाराज जी वापिस आए क्या हुआ तो बताया कि एक महीने बाद है तो गुरु महाराज जी ने बुलाया देख तू मेरे पास तेरे से छिप जा महाराज जितना भी बुलाए तू शब्द मत करना निकलना नहीं किसी तरह से तू मुझे तो बहुत पिटाई करेंगे
मैं अपने दोनों पंडित को बुला लिया
बुला के ले आया, बोलो बोल, इसमें यही बताया सरकार सी का फैलने का अधिकार नहीं है, हो गया हम लोग कोई उत्तर नहीं दे सके तीनों में से। जीवों के लिए पुरुष के लिए नहीं, जीव का जीव के लिए सबके लिए। और जब भी कुछ नवद्वीप में कुछ होता पहले गुरु महाराज हमारे दोनों में आलोचना होती हो क्या की प्रकाशों को पता नहीं चलता था, हमारे साथ रहने का सब पता चलता था। जब गौ पूर्णिमा के दिन जब गुरु महाराज हरिनाम दीक्षा देते थे पहले मुझे बुलाते थे, बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं हमारे पास ये जाना है। पहले मैं समझता नहीं था क्यों कि आगे गुरु महाराज हमारे अचानक आकर प्रणाम करते, महाराज जी नीचे उतर के प्रणाम करते दोनों, बताया महाराज जी मैं पाप करके जा रहा हूँ मुझे आदेश दें। तो जब दूसरी साल भी महाराज गुरु महाराज जी ने बुलाया से बोला महाराज जी आज देख क्या कि मैं आऊंगा, मैं गुरु ने बताया गुरु महाराज जी आपका आचार्य आपके जाने की क्या जरूरत, मैं महाराज बुला के लाता हूँ। बोले हमने तू नहीं समझता जो बोलता वो करो मुझे पूछना मत, बोला आज मेरे जाने के दिन है जाने के दिन नहीं है, जब जरूरत अभी आते हैं और जब मैं भी जाता हूँ ये स्पेशल दिन है उनको मुझे विवाह चाहिए मुझे जानना है सब उस कहते। और गुरु महाराज जी प्रवचन के समय और समय भी बोलते थे कि सुधी बस परे सुधि मिटरे भाव तमन्नी भजन तुह गीता अहम यह नंद मंदे यशकालीन दे वरण रंग नंद महाराज बहुत बनाया करते थे। मैं पूछा कि गोपियों को सुना पहुंचा सब जीवन किशोर की सेवा करना चाहते हैं विभूषण कालिवस्त्र में कहा कैसे नंदो मंदे अहम आनंद मंदे क्यों उसी बात बोलते हैं, पर जब तक नंद बाबा जसकालीन कृपा ना हो तब तक मधुर से प्रवेश नहीं होगा। बात्सल रस मधुर रस को बहुत प्रकार से पुष्टि करती है, देखो जब रथा जी पुष्टि करने जाते हैं कहा जाती है नंदोमा जाती है तो उसी में इसे पुष्टि आए थे। और बुद्ध व्याख्या किया था और बताया था समो नहीं वो परम रूपम पूरी मधु पूरी परा भया बहुत स्पेशल रूप है हम आप तो ये वो परम रस, इसको याद रखना इसी श्लोक के अंदर समस्त सिद्धांत छिपा हुआ है। उस समय समझता नहीं था तो गुरु जी महाराज बता रहे थे दोनों ये बात बहुत बोलते थे हम लोग जिसको समझ सके तो ये हमें बड़े साथ हम सौ शास्त्र हैं जो गुरु महाराज बात बोलते हैं दो चीज बोलने का आदि भक्त लोग हैं बोलेंगे और सबसे तो सबसे बड़ी बात होगी हम महाराज के सिंह से सुने तो जो महाराज सदगुरु में जब बहुत जिताया उनके सिंह से सुनने से हम लोग का परम कल्याण है। एक अवसर के भक्त समाप्त करता हूँ
इसको समय अधिक चाहिए। 10 बजे हम बैठेंगे सब लोग 10 बजे आएंगे ऑल शुड कम एट 10 एंड देन सम अदर कथा मिलती है उस समय एक बीसी समय दीजिए फिर विक्रम महाराज से संबंधे बोलवे पूज्य पद बामन महाराज संबंध तुम्हें शंकर भी कुछ बोल
सनासी वृंदव मातृ वृंदव गोस्वत सज्जन वृंदव तथापि कभी अपने जीवन में
भाषा तो
सब कुछ जो भाव है सब कुछ महाराज जी ऊपर दे देते हैं और उन्होंने क्या करते थे और ये बोले दे देते हैं उनके आदेश पालन करो उनके ही जो कुछ भी है वही सत्य है। इसलिए गुरु महाराज जी मैंने देखा जब श्री महाराज जी मथुरा से नवदीप लौट रहे गुरु महाराज श्री महाराज जी किस प्रकार आदर्श स्नेह आदि और उनके सम्मान कर रहे थे ये गुरु भद्र के प्रति ऐसे आदर्श स्नेह और सम्मान आज तक किसी मन में किसी के साथ हम लोग नहीं देखते। मैंने देखा अच्छा गुरुदेव सत्र गंगा प्रणाम करते महाराज जी जो नवनीकरण से जब प्रवेश करते थे श्री महाराज जी और उस समय गुरु महाराज जी वाराणसी निकल करके आते थे उस समय और आगे शास्त्र का दर्शन करते थे ये सब देखने के लिए सुनने मिला। वैष्णव के किस प्रकार व्यवहार ये सब वैष्णव के व्यवहार हम लोग देखते जगत जी मन शिक्षा देते हैं वैष्णव के किस प्रकार डॉक्टर जैसे कुछ साल पहले गुरुदेव ने और टीकरी में वो एक सौ एक भक्तों ने ठाकुर कीर्तन व्याख्या करे थे वैष्णव देवी का चरण कोई हृदय बंधु जानी वैष्णव देख करके मैं सत्य दंडवत रहेंगे और अभी तो हृदय में मित्र जानेंगे। गुरुदेव जब श्री महाराज जी जब टीकरी में इसी व्याख्या कर रहे थे मैंने देखा महाराज के हृदय में कैसे कैसे पुनः आदि ये सब भाव में देखा और वही चिंतन करने लगा ये आज से कम से 20-22 साल पहले श्री महाराज जी हमारे गुरु महाराज जी की कैसे आदर करते थे। गुरु महाराज जी और श्री महाराज जी जो एकत्रित होते थे उनकी उनकी आलोचना उनकी क्रिया आदि ये सब अलौकिक ये समस्त सिद्धांत यह कभी कभी कहते थे गुरु महाराज जी हास्य परिभाष कर श्री महाराज जी हास्य परिभाष करके गुरुदेव जी कहते थे आप जाकर भाषा पैदा करते हो और मैं बच्चे में प्रैक्टिस साथ करता हूं। देखो गुरु वैष्णव के कैसे कहा जाता है प्रेम सुंदर भाषा है प्रेम तो है गुरु महाराज जी हंसते थे श्री महाराज जी इस प्रकार त्रिविक्रम महाराज जी ऐसे बात बोलते थे। कभी कभी हम लोग समझ नहीं पा रहे थे जब पहले पहले जब गुरुदेव के लिए श्री महाराज के साथ विक्रम के साथ महाराज के साथ मिलते थे कभी लगते थे ये झगड़ा चल रहे हैं किंतु वास्तव नहीं है कितना प्रेम शरीर सौहृद भाव गुरु भ्रातृ के प्रति ऐसे सौहृद भाव हो रहे थे तब तो वैसे पता होता है। इसे तो श्री महाराज जी अपने प्रवचन में कहा था ये जब तक श्री गुरुदेव और महाराज जी जब तक रहे तब तक गौरी वृंदावन के समीप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सिर ऊंचा करके कुछ बोले। गुरुदेव हमें अपने गुरुदेव के उदाहरण से गुरुदेव को देखा जब गुरुदेव और श्री महाराज जी एक ही स्थान पर बैठे थे केशव जी गौरी मठ में राधा सुनने के समय गुरुदेव श्री महाराज जी कहते थे महाराज आप कुछ बताइए गुरु महाराज जी आप उन पर गई न और दिन ही ऊपर बोलते आप है आप है बार बार बोले पर गुरु महाराज जी राधा तत्व बोलते हुए केवल दो शब्द भक्तों ठाकुर जी पर बोले बोलते थे क्या राधा हम तो राधा तत्व पाती सदा सेजन भजे हम तो राधिकार तत्व पाती सदा भक्त नहीं
प्राय बोलते
हैं। इसी प्रकार गुरु महाराज बोलते थे बस इतना ही समझो ज्यादा वस्तु के ऊपर नहीं बोलते थे केवल अल्प भाषा में वितंत्र सारांश और इतने सार संक्षेप में बोलते थे। कभी कभी वहां भी मैंने देखा गुरु महाराज के कुछ बोलते थे गुरुदेव और कुछ राधा तो बोलो अरे नहीं नहीं इसको छिपा करके रखना है। गुरुदेव और अल्प भाषा में भक्ति गुरु ठाकुर के कीर्तन की व्याख्या करके ऐसे शक्ति बोलते थे। आज गुरु महाराज की चरण कमल और उनकी जो कुछ भी है जो कुछ साक्षात मूर्त जो कुछ भी पढ़ा हम श्री महाराज के ही हृदय में महाराज के शब्द में सब कुछ हम लोग दर्शन करते हैं। आज महाराज ने उनके पास बात करें गुरुदेव हम लोग के पास बात करें ये जन्म जन्मांतर में उनकी सेवा प्राप्ति हो वंशा
अखन समय हो गए छे नाउ टाइम इज ओवर अर्चन इज डन देन आई विल डू आरती।
और इसके बाद में आरती होने के बाद में पुष्पांजलि देंगे एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कम एट 10. देर आर सो मेनी वक्ता, बहुत से वक्ता आ विशेष कर पूज्य पात्र विक्रम महाराज के संबंधे कुछ बोला है नहीं उन्हें संबंधे बोला हो अतएव सब लोग 10 समय अवश्य आस. I request you all to come at 10 and hear Harikatha. Go.